अब आगे आयत 9 से लेके अगली चंद आयतों में कायनात के बनने के दिनों की कुछ बातें, गैब से इनका मामला इकट्ठा पढ़ लेते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। कुल आइन्नकुम, कह दीजिए नबी, इनसे पूछो, क्या लतक फुरून बिल्लजी, क्या तुम कुफर करते हो, इनकार करते हो उस हस्ती का जिसने खलक अल अर्द फी यौमैन, बना दिया जमीन को दो दिनों में। यानी क्या तुम उस रब का इनकार करते हो जिसने जमीन को दो दिनों में बनाया। यौमैन यौमुन का तस्निया है। और क्या करते हो, तजलून लहू अंदादन, और तुम इसके मद्दे मुकाबिल ठहरा रहे हो। कौन, जालिका रब्बुल आलमीन, ये है रब्बुल आलमीन, ये है रब्बुल आलमीन। क्या तुम उसको छोड़कर दूसरों को लेते हो, क्या अंदाद, निद की जमा, मद्दे मुकाबल। अब देखिए कि अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, इसका मालिक भी वो है, हाकिम भी वही है। अब दुनिया में अगर कोई हाकिम बनेगा तो उसे अल्लाह का ताबे बन के रहना होगा ना, मातहत बनेगा। अल्लाह ताला की इस दुनिया में उसकी हैसियत एक नायब की हो सकती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर किसी को दुनिया में कुछ बड़ा बना दिया जाए तो अल्लाह की इताअत से आजाद हो जाए, खुद हाकिम बने, खुद को हर तरह के इक्तदार का मालिक समझे, तो अल्लाह का मद्दे मुकाबिल है। यही कानून एक फर्द पर है, एक मुल्क पर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर। जहां जहां गैर के नाम की पूजा है वहां ये सब कुछ है। एक अल्लाह को उसका हक देना, इसी की जरूरत है। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो ये चीजें मैंने तुम्हें बना दी, तो क्या अब इन छोटी सी चीजों को लेके तुम मालिक बन गए हो? नहीं। वजअला फीहा रवासी मिन फौकिहा, पहले जमीन की बात की, अब का इसमें बनाए पहाड़ों के लंगर इसके ऊपर। पहले जमीन थी, फिर रवासी या रासियत, उनकी जमा, बोझ को कहते हैं, पीछे पड़ चुके रासियात, भारी देगे, गले में सूरह नमल में था, रासियत उन भारी पीतल की देग जिसे हिलाया ना जा सके। यानी पहाड़ों को देगों की तरह जमा दिया, लंगर है। पहाड़ ना होते तो जमीन लुढ़कती रहती जैसे कोई गोल फुटबॉल घूमता। वबारक फीहा, और इसमें बरकतें पैदा की। वकद्दर फीहा अक़वातहा, और उसमें मुकर्रर कर दी उसकी कुव्वतें, उसकी ताकतें। कुव्वा अक़वातहा, कूत की जमा, कूत कहते हैं खुराक को, खाना। कूते ला यमूत कहते हैं वो खाना जिसको खाकर बस बंदा मरने से बच जाए। और बाज़ लोग कहते हैं कि बस इतना ही खाओ कि जिसके बाद तुम जिंदा बच जाओ। रोजियां कह सकते हैं आप। हर खित्ते में मुख्तलिफ चीजें होती हैं ना, उगती हैं। और कद्दर युकद्दिर, उसे तकदीरन, अंदाजे से रखना। किसी काम को प्लानिंग के साथ करना या बगैर प्लानिंग के करना, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात को प्लानिंग के साथ बनाया। आज हमने खाना भी पकाना है ना, तो उसके लिए भी प्लानिंग की जरूरत है। घर भी साफ करना है तो प्लानिंग की जरूरत है। इन आयात में अल्लाह ने हमें सिखा दिया कि कामों को तरतीब और तंजीम के साथ करो। प्लानिंग ज्यादा टाइम लेती है काम करने से। हम कहते हैं टाइम ही नहीं है प्लानिंग करने का, काम करते हैं और आधा करते हैं, फिर बिगड़ते हैं, फिर शुरू कर देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। यही वजह है कि आज हमारे कामों में हुसन नहीं रहा। देखिए फितरत हमें काम करना सिखा रही है। देखो ये कैसे हो रहा है, ये एक दिन की खेल नहीं है, ये सदियों से चल रहा है। और कोई काम ज्यादा देर तक तभी चलता है जब वो प्लानिंग के साथ हो। आप सिस्टम को माने, रूल्स को माने, जो आपको कहा गया माने, आप अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, फिर जो काम करने वाले उनको उनकी जिम्मेदारियां करने दें। आप देखिए ना कि हम कोई भी काम करते हैं, मसलन आप ये कोर्स कर रहे हैं, तो इस कोर्स के दो मेन कॉम्पोनेंट है ना। एक वो लोग जो इस कोर्स में आपकी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनको जजाय खैर दे, कोशिशें करते हैं, दिन रात काम करते हैं, आपके लिए प्लानिंग्स कर करा के सब करते हैं। लेकिन इसका मेन कंपोनेंट तो आप है ना, एज अ स्टूडेंट। अब ये जो मर्जी कर लें, रूल्स बना लें, जो भी आपको ये हुक्म दे दें या अर्ज कर लें, अगर आप उसको सुन के ना दें तो सिस्टम कैसे चलेगा। कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो इसी तरह कायनात का निजाम भी एक हाथ से नहीं चलता। अल्लाह ने इतना खूबसूरत प्लान सिस्टम हमारे सामने रखा और हमें बताया कि तुम भी इस पे गौर व फिक्र करो, अपनी जिंदगी में इसको जगह दो। वबारक फीहा, बरकतें मिलती हैं। जितना प्लानिंग होगी उतनी बरकत होगी, जितना वक्त देंगे काम उतना खूबसूरत होगा। और ये करते रहो। और फिर क्या किया, वकद्दर फीहा अक़वातहा, फिर उसमें सब रोजियां डाल दी, कहाँ चावल उगने, कहाँ चना उगना, कहाँ गंदम उगनी। ये सब कैसे हुआ, फी अरबाती अय्याम, चार दिनों में। دو دنوں میں زمین پیدا کی جو بذات خود ایک بہت بڑی تخلیق ہے، پھر مزید دو دنوں میں اس کے اوپر پہاڑ جما دیے اور زمین کی مٹی کو پیداوار کے قابل کیا. ابتدا میں زمین آگ کا ایک ٹکڑا تھی، آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوئی. پہلے پہلے اس کی مٹی جو تھی وہ ان آرگینک کمپاؤنڈز کا مجموعہ تھی، ہوتے ہوتے اس میں آرگینک کمپاؤنڈز پیدا ہوئے، زندگی کی صلاحیت پیدا ہوئی اور پھر زندگی شروع ہوئی. 4 دن ہو گئے اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا. سوال سائلین، تمام سائلین کے لیے برابر ہے. اب یہ آیت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک بھی یہ آیت متشابہات میں سے، یہ 2 دن کون سے تھے، 4 کون سے تھے، پھر 2 کیسے ہوئے، اس پہ لوگوں نے بہت کچھ بولا اور لکھا، اور میں اس پہ 1 منٹ بھی نہیں لگانا چاہتی. میرا اور آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کچھ نے دنیا کے دنوں کی بات کر کے مذاق اڑایا، اچھا جی 2 دن کیوں لگے؟ کسی نے کہا اچھا جی 2 دن میں سب کیسے بن گیا، تو ہمیں کیا لگے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. اس کو دیکھ لیجئے، سوال سائلین، اس سے کیا مراد ہے؟ تمام سائلین کے لیے برابر ہے. کیا؟ زمین کی مختلف صلاحیتیں، اس کی پیداوار، اس کے غذائی ذخیرے، سب کا حق ہے اس پر. یہ مطلب ہے سب کو ضرورت ہے. اللہ نے کو یہ نہیں کہا کہ یہ تھرڈ ورلڈ ہے ان کو غریب کر دو، یہ یورپ ہے اس کو امیر کر دو، یہ سپر پاورز ہیں، سارے خزانے ان کے ہاتھ میں، جس ملک کی مٹی ہے اس نے تو اپنا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرورت مندوں کے لیے رکھا ہے، ہر علاقے میں اتنا رسک رکھا جتنا وہاں کھانے والے لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں. آپ کہیں گے آج تو ہمیں اس طرح نہیں دکھ رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے لوگوں کے ریسورسز کو مس یوز کیا، غلط طریقے سے لے لیا. اللہ نے سب کا حصہ رکھا ہوا ہے. ہم جب کچھ لوگ زیادہ لے لیتے ہیں نا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہ پھر حق والوں کا حق بھی مارا جاتا ہے. اس لیے اس ایک آیت کو اگر سمجھ سکت ہم اپنے لیے یہ رکھیں کہ ہر ایک اس کی جگہ پتہ ہو، ہر ایک کو اس کا مقام پتہ ہو، جو چیز جتنی چاہیے آرگنائز طریقے سے کر لیں. کوئی بھی دعوت ہو، کھانا ہو، پینی ہو، کسی بھی جگہ کوئی ادارہ ہو، جب ضرورت کی سب چیزیں ہیں تو فکر کی کیا بات ہے؟ گڑبڑ کہاں ہوتی ہے؟ چیزیں نہ ہوں یا لوگ نہ ہوں، تو پھر انسان اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھے. اسی طرح اس کے چند اور معنی بھی ہیں، قدر فی اقوات فی اربعت یامن سوال سائلین. تو سن لیجئے، بعض مفسرین کیا کہتے ہیں، زمین میں اس کے رزق جو ہیں مانگنے والوں کے لیے ٹھیک حساب سے رکھ دیے گئے ہیں، پورے 4 دنوں میں، یعنی کم یا زیادہ نہیں، پورے 4 دنوں میں، یعنی وہ کہتے ہیں سوا کلف 4 دنوں کے لیے. اسی طرح ابن عباس، قتادہ اور امام سدی کہتے ہیں زمین میں اس کے رزق 4 دنوں میں رکھے گئے، پوچھنے والوں کا جواب پورا ہوا. یعنی کوئی اگر یہ پوچھے کہ یہ کام کتنے دنوں میں ہوا، تو کہہ دو 4 دن میں ہو گیا. اسی طرح ابن زید کہتے ہیں کہ زمین میں اس کے رزق مانگنے والوں کے لیے 4 دنوں کے اندر رکھ دیے، ٹھیک اندازے سے ہر ایک کی حاجت اور طلب کے مطابق. بہرحال اس سے اگر آپ دیکھیں کہ عربی لغت کے ساتھ دیکھیں تو سارے معنی ٹھیک ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس ہمیں یہ پتہ ہے کن فیکون کا مالک ہے، اور وہ عالم امر اور عالم خلق کے کاموں کو مختلف انداز سے کرتا ہے. بہت دفعہ اس پہ بات ہو گئی ہے، اس لیے یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. کن کہہ کے کیا کرتا ہے اور تدریجن کس کام کو کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے اس کائنات میں جو کچھ ہے اللہ نے اس کو ایکو سسٹم میں رکھا ہوا ہے. ہر چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھا رہی ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ رکھا ہوا ہے نا. آج بھی دنیا میں یہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی مچھلی ہیں تو چھوٹی، چھوٹی تو بڑی. کسی علاقے کی بات ہے کہ وہاں انہوں نے فصلوں پہ جو کیڑا پڑ جاتا ہے اس کو مار دیا، ختم کر دیا انسیکٹ کلرز کے ساتھ. تو وہاں ایک بڑی خوبصورت تتلی ہوتی تھی، وہ مر گئی. جب چیک کیا تو پتا چلا کہ وہ کیڑا اس تتلی کی خوراک تھی. جب کیڑے مرے تو تتلیاں مر گئیں، بٹرفلائز، پھر دوبارہ ان کو پیدا کرنا پڑا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ نے انسان تو انسان جانوروں کے کھانے کا انتظام کیسا کیا ہے. شارک مچھلی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑی ہوتی ہے نا، یہ پوری پوری مچھلیوں کو کھا جاتی ہے. اب اس کے منہ میں جو دانت ہوتے ہیں نا، ان کے اندر کچھ گوشت پھنس جاتا ہے. اب یہ خود بیچاری کیسے نکلے اور وہ کیسے فلوس سے کھولے اور ٹوتھ پک منہ میں ڈالے. اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے کہ شارک مچھلی کے منہ میں ایک چھوٹی سی مچھلی رہتی ہے، ہر وقت اس کا گھر ہے وہ. جو کانٹے یا گوشت کے ٹکڑے شارک کے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں نا، یہ بیٹھ کے ان کو کھاتی رہتی ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو آپ کے دانتوں کے سب پلیک ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیکٹیریا کی کوئی غذا ہے، ہم ان کو برش کر کر کے مارتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، اللہ نے سب کا انتظام کیا. और इन चीजों को पढ़ते हुए तो वाकई लगता है कि अल्लाह जिसने हमारी फितरत बनाई उसी ने हमें ये वही भी दी है। और ये सब चीजें साथ हैं, वही और फितरत दोनों हम झोली हैं, एक गांव की रहने वाली हैं, दोनों आसमान से उतरी। रूह और जिस्म दुनिया में आज हमें जो मजमुआ दिखता है, अल्लाह ने सब के तकाजे पूरे करके हमें बता दिया। ये जो सवाल है साहिल, इनका एक बड़ा ही अजीबो गरीब लोगों ने मान लिया जो अपनी मौत खुद मर गया, जिसको कैमनिज्म कहते हैं। आपको शायद पता है कि नहीं, लेकिन रशिया अपने दौर का एक बहुत बड़ा मुल्क था, वो कैमनिस्ट थे। वो कहते थे सबका माल बराबर कर दो, कोई सारा दिन काम करके 1 लाख रुपया कमाता है या 10 रुपए कमाता है या 20, एंड पे सब गवर्नमेंट को दे दे और फिर गवर्नमेंट सबको बराबर बांट दे। और इन आयतों को बाज मुसलमानों ने भी दलील बनाकर पेश किया, लेकिन आज वो निज़ाम अपनी मौत मर चुका है। अल्लाह ताला की दुनिया में तनवो है, कोई खूबसूरत है तो कोई कम शक्ल का भी है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई छोटे कद का कोई बड़े। कबूल करो क्योंकि लीना बलुआ को मैं यू को मकसन हुआ अमला, तो सबका माल बराबर कर दिया जाना ये गैर फित्री है। अबू बकर बहुत अमीर थे, अब्दुलरहमान बिन औफ बड़े अमीर थे, हजरत उस्मान बहुत अमीर थे, लेकिन इसके साथ अब्दुल्ला बिन मसूद को देखिए, खबाब बिन औरत को देखिए, गुलाम थे, मिस्कीन थे। तो फितरत का निजाम है, ये तो बहुत ही गैर फितरी बात है कि सबके माल को बराबर कर दो। या जो टैक्स बेस्ड निजाम है ना मुल्कों में, उसमें भी यही गलत कबाहत है, जो जितना कमाए उसका टैक्स ज्यादा लो, जो कम कमाता है थोड़ा करो, ये जुल्म की बात है। अल्लाह ने ऐसा कोई जुल्म नहीं किया। अल्लाह ताला कहता है मन जद्दा व जद्दा, जिसको ज्यादा दी हाँ ज़कात के जरिए उस उशर के जरिए लोगों में देते रहो ताकि बैलेंस कायम रहे। तो बहरहाल जमीन की बातें करके आयत 11 में अब आसमान की बात है। यहाँ देखेंगे हम कि कायनात का आसमान पहले कैसा था, सुमस्तवा इलस समाई, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, यानी जमीन को दुरुस्त किया तो अब ऊपर की तरफ रेनोवेशन शुरू हुई। वही यदो खान, और वो भी एक धुआं सा था। कब? जब आसमान एक धुएं की शक्ल में था, अभी 7 आसमानों की लेयर्स नहीं बनी थी। कायनात के इब्तदाई मराहल के इशारे हैं, जिसको आपने बिग बैंग का नाम से सुना होगा कि शुरू में दुनिया आग का एक गोला थी, फिर ठंडा हुआ, धमाके हुए, धमाकों के जरिए मुख्तलिफ सैयारे सितारे बन गए, फिर कहकशाएं बनी, और होते होते फिर उसी में से एक हमारी जमीन बन गई। लेकिन रिवायात में यह आती है चीज के आसमान पहले दोहान था, किस सूरत में था हमें इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। सच्ची बात है, कुछ भी था, हमें यह पता है कि आज बड़ा खूबसूरत है। ज़य्यन्नस समा दुनिया बिमसाबीहा, अल्लाह ने सितारे जड़े हुए हैं काले रंग के आसमान पे, और सुबह कितना प्यारा ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर है, कितना कोल्ड है। आप सोचें अगर डार्क ऑरेंज कलर का आसमान होता, पैरट ग्रीन आसमान होता, बाहर जाते ही खौफ आता, हाय ये क्या है, खून निचुड़ रहा है, सुर्ख रंग का आसमान होता, अच्छा ना लगता है ना। तो ये अल्लाह की जात है, दुनिया का निजाम सजा दिया, हर चीज रख दी, जानवर घोड़े भैंसे इंसान बकरियां सबको दे दिला के आसमानों को भी अच्छा कर दिया, और वहां जाके क्या खूबसूरत निजाम पैदा किया। और आसमान भी साथ है, 7 हेवंस का नजरिया आज भी है। साइंसदानों ने ये भी बता दिया कि ये गैसेज हैं, मुख्तलिफ जगह पे जमी हुई हैं, यानी सॉलिड जिस्म नहीं है बल्कि गैस की शक्ल में एक है। तभी तो ऊपर रूहें आती और जाती हैं, कभी बादलों में से जहाज को गुजरते हुए इस बात को समझें तो बहुत अच्छा समझ सेंगे कि आसमान एक सॉलिड ऐसे पत्थर की चीज नहीं है कि उसमें से कोई गुजरे ना। हम तो कुछ ही 1000 फुट जाते हैं ना, अगर और ऊपर जाएंगी और रूहें जाती हैं तो फिर ऐसे ही होगा ना। तो ये अल्लाह की जात है जो किस तरह ये सारे काम लेती है। आसमान बोलकर यहां पूरी कायनात मुराद ली गई है। अब ये धुआं क्या था, कैसे था, इस पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर ये था। तीसरी बात है कि मुतवज्जे हुआ, सुमस्तवा, इससे क्या मुराद है कि पहले सारी जमीनें बना बनू के फिर आसमान पर गए, ऐसा नहीं था। मतलब ये था कि पहले जमीन बना ली फिर उसके बाद आसमानों की तरफ तवज्जो दी, पहले क्या बना बाद में क्या बना, बहुत बहसें इस पे, कुरान की मुख्तलिफ आयात को जमा किया जाता है, कभी कहता है पहले जमीन बना पहले आसमान बनी। देखिए मुझे और आपको इससे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो ये पता है कि हम इस वक्त जमीन पे और मरने के बाद इंशाल्लाह हमारा मुकाम आसमानों के ऊपर जन्नतें हैं, बस इसकी कोशिश करें। खुलासा क्या है कि ये दुनिया किसी खिलंडरे का खेल नहीं है, ये ऐसे ही नहीं बन गई है हैपेजर्डली, ये ऐसे ही एमलेसली पर्पजलेसली नहीं बनी, कुछ ना कुछ इसमें है। अल्लाह ने सब चीजें करके हमें दिखा दी कि तुम्हें इसमें अपना हिस्सा डालना है। इसीलिए अब आगे देखिए आसमानों को जो काम दिए गए उनका तذکرہ किया जा रहा है कि ये सब करने के बाद उसने क्या किया। फकाल लहा वलिल अर्दी, फिर कहा उसको, हा क्या पहला आसमान, अरबी जुबान में जमीन और आसमान दोनों मुअन्नस होते हैं। तो कहा उसको यानी आसमान को, वली लर्दी और जमीन दोनों को मिलाएं तो क्या हुआ? बस कहा जमीन और आसमान को, इतिया आओ तुम दोनों, ये तस्निया से अमर है। ठीक है, दो को हुक्म देना ना, एक को कहेंगे तो आओ और दो को हम कहते तो हम कहते हैं आप आइए, तो इतिया तुम दोनों आओ, किधर आओ, मेरी बात सुनो, इतात करो, तवम अवकरहन, खुशी से आओ या जबरन आओ, यानी मेरी बात तुमको माननी ही पड़ेगी, खुशी से आओ तो भी ठीक है, नहीं आओ तो ना आओ। ठीक है, जवाब क्या मिला? कालता, दोनों ने कहा, किन दोनों ने? आसमान और जमीन ने। अतैना, हम दोनों आ गए। कैसे आ गए? तौईन, पूरी तरह मती होकर। तौईन कहते हैं इतात करने वाला, उसकी जमा है ये तौईन, हम दोनों आगे पूरी तरह इतात करने वाले बनकर। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा आसमान और इतनी बड़ी जमीन, खुशी से आ गई, मतलब ये कि सरेंडर कर दिया, अल्लाह ने जो कहा कर दिया, जिस चीज का हुक्म दिया कर दिया। फिर क्या हुआ? फकदाहुन्न सब समावातिन फी यौमेन, फिर इसने इनको 7 आसमानों की शक्ल दे दी 2 दिनों में। कुरान पाक में 7 मुकामात पर यह जिक्र मिलता है कि जमीन और आसमान की तख्लीक 6 दिनों में हुई, लेकिन कुरान का ये वाहिद मुकाम है जहां इन 6 दिनों की फिर मजीद तफसील है, जिसको आप कह सकते हैं कि ब्रेकअप दिखा दिया, कैसे तख्लीक का ये अमल हुआ, क्या सीक्वेंस था ये तक बता दिया, पहले जमीन बनी और 7 आसमान इसके बाद वजूद में आए, लेकिन अभी तक हम ना तो इन 6 दिनों को समझ सके हैं और न जमीन और आसमान के इस तख्लीकी अमल को साइंटिफिकली जान चुके। हमारा ईमान है कि मुस्तकबिल में हो सकता है साइंस इस हद तक भी पहुंच जाए, फिर और लोग कहेंगे कि कुरान सच्ची किताब है, कल तक नहीं थी बाकी बातें पता, कुरान में मौजूद थी, आज वो साबित हो गई है, हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ ऐसी थेरी सामने आए कि पता चल जाए, लेकिन अल्लाह कहते हैं बना के छोड़ नहीं दिया। वाउहाय फी कुल्ली समाए नम रहा, और इसने वही कर दिया हर आसमान पर इसका हुक्म, 7 आसमान बनाने के बाद हर आसमान पर इसके तफसीली अहकामात भेज दिए। असल ये मसला है, इसको समझो, काम के लिए बनाया, शो पीस नहीं है। हाँ, वज़ैयन्ना समा दुनिया भी मसाबीख, और हमने आसमाने दुनिया को चिरागों से मुज़य्यन कर दिया। वह हिफ़्ज़न, और इसकी खूब हिफाजत की, आसमान के 2 काम इस छोटे से टुकड़े में आगे आयत के, ज़ैय्यन्ना समा दुनिया भी मसाबीख, मसाबीख मिसबाह की जमा चिराग को कहते हैं, पीछे पढ़ चुके सूरह नूर में, सितारे क्या हैं, खूबसूरती भी हैं, और हिफ्जन किससे हैं, पीछे पढ़ चुके हैं सूरह हिजर में, आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, शैतानों से हिफाजत, जब शैतान ऊपर जाते हैं तो उनको शोले पड़ते हैं, तो गोया के सितारे जमीन से करीब तरीन आसमान के लिए बायस जीनत है, और शैतान जिन्नों की सरगर्मियों के खिलाफ हिफाजती चौकियां भी हैं, खबरें लेने जाते हैं ऊपर उनको रोक दिया कि ये प्रोहिबिटेड एरिया है, ममनुआ इलाके, इसमें मत जाना, जाते हैं तो सितारों से मिसाइल उन पर फेंके जाते हैं। सूरत हिजर की आयत 17 और सूरत अंबिया आयत 32 में भी ये बात गुजर गई, फरमाया ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये इस हस्ती का बनाया हुआ अंदाज है जो जबरदस्त है और कुल इल्म रखने वाला है। इसको पढ़ते वक्त तो बड़ा ही प्यार आता है अल्लाह ताला पे, अल्लाह की जात सब कुछ तरीके से करती है, तो क्या मुझे और आपको अपने काम सलीके से नहीं करने चाहिए? जरूरी है कि दीनदार होने का मतलब बेढंगा ही होना है और बस खत्म करो और झाड़ फाड़ करके निकालो चीजों को? अल्लाह ताला हमें सिखाता है, अपनी सनाई दिखाता है, पहले चीज बनाने का तरीका, फिर बनाई, फिर उसको सजाना, फिर संवारना, यही हम सबको काम करने का तरीका होना चाहिए। दीन का कोई काम करे ना, सर झाड़ फाड़ ना करे, ये हर एक अपने आप से पूछे, क्या जरूरी है कि हर काम आखिरी मोमेंट पे करें, आखिरी दिन पे जाके हमने बिल जमा कराना है, कि कोई बात नहीं अभी बहुत दिन है, लास्ट ओवर, फिर हम भागते हैं? क्या हम कामों को अच्छे तरीके से नहीं करना चाहते? हमने कभी सलीके से काम नहीं किया, कभी हमने अपने घर में दावतें नहीं पकाई, कभी हमने अपने घर नहीं सजाए, कभी हमने अपने कपड़े नहीं बनाए, सिर्फ एक जोड़ा बनाने के मरहले को देख लें, जो उसमें हमारी एफर्ट और जो कोशिश होती है अल्लाह की बना, फिर क्यों नहीं कहते सर पे पड़ेगी देख लेंगे, फिर होगा जो कर लेंगे, चलो जो मिला पहन लेंगे, उसके लिए तो एक एक बंदा बाली और रबड़ बैंड तक मैचिंग ढूंढते हैं, जूती की नोक कोई देखे भी ना तो उसको भी जा जाके मैच करते हैं, तो क्या दीन के काम करते वक्त ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं है? ये सीखने की बातें मेरे और आपके लिए, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें ऑर्गेनाइज कर दे, अल्लाह हमें दीन को इज्जत देने वाला बनाए, दीन के लिए वो सारे ख्वाब देखने वाला बनाए जो हम दुनिया के लिए बनाते हैं। कैसे दर्जी कपड़ा बनाने से पहले आप देखिए, पहले कपड़े का हिसाब लगाता है, अच्छा क्या बनेगा, फिर कहते हैं जाए जी इस कपड़े में नहीं बनना, फिर कहते हैं जी इस पे लेस चाहिए, इस पे डोरी चाहिए, फिर वो उसको बेल्ट के अंदाजे लगाता है, फिर काटता है, बेवत्ता है, फिर कहीं सिलती है, फिर उसको टांगते हैं, फिर इस्त्रियां करते हैं, पीछे से एक कमीज आपने पहन ली। तो क्या हम इस दीन के कामों को इतना भी हक नहीं देते, और किसी को हक देते भी नहीं हम कि कोई हमें सिखाई दे। हम कहते हैं छोड़ो गुजारा हो गया, इतनी जिंदगी गुजर गई और क्या सलीके से काम करना, आप तो ऐसे क्यामत आने वाली है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से काम करने वाला बनाए। और ये जो तख्लीके कायनात के सिलसिले में बात है ना, तो यहां भी है, बाकी जगहों में कुछ नंबर नोट कर लीजिए, सूरत बकरा में, सूरत आल इमरान में, इसी तरह सूरत नहल, सूरत मरियम, सूरत यासीन और सूरत मोमिन आयत 68 में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब नहीं मानते तो क्या किया जाए, अब देखिए फिर जहां थोड़ी सी सोच बदल, ये है वो आयतें, या नोट कीजिएगा कि जो आपको शाने नजूल में वाक्य सुनाया था अबुल वलीद का, तो वो आयत ये हैं जिनको सुनकर एकदम उसके जहन में खौफ आ गया था और उसको बहुत लगा कि शायद अगर अल्लाह के नबी सल्लम की जुबान मुबारक से कोई बात निकल गए तो हम खत्म ही हो जाएंगे, हलाक ही ना कर दिए जाएं। पहले आयतें पढ़ लेते हैं, फिर इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک ایسی خوفناک کڑک سے جیسی کہ قوم عاد اور قوم ثمود کی کڑک تھی. آپ اب میں اور آپ پڑھ رہے ہیں نا، لیکن ذرا سوچیں واقعی اس دور کے لوگوں کے لیے جہاں اللہ کے نبی موجود تھے، اور اس وقت یہ بات کہی گئی کہ تم نہیں مان رہے اس نبی کو، देखना अब तुम्हारे साथ क्या होगा। और याद रखिए कि कौम आद और समूद के किस्से अरबों में आम थे, उनके अंदर ये चीजें थी, इसीलिए तो अल्लाह ने उनकी बात कही और इसीलिए अबुल वलीद इन आयतों को सुन के घबरा गया। व इस जात हुमुर रुसुलुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, क्या हुआ था उनके साथ जबकि इनके रसूल आ गए थे इनके सामने से भी और इनके पीछे से भी। यानी कौम आद और समूद का जिक्र करके अरब का पूरा इलाका मुराद लिया गया कि हर तरफ इनके पास रसूल आए थे, अल्लाह ताला ने इनको मुख्तलिफ तरीके से अपनी हिदायत का पैगाम पहुंचाया था लेकिन लोग उससे फायदा ना उठा सके। पैगाम क्या था इन सारे रसूलों का? वही पैगाम इस नबी का, कोई नई बात नहीं बल्कि अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, कि ना तुम इबादत करो सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करो, अल्लाह की जात काफी है कि उसकी इबादत की जाए, बस तुम उसकी करो। तो यही दावत तो इस मोहम्मद सल्लम की है, क्यों परेशान होते हो? قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، जवाब सुनिए कौम का कितना बेकार है। क्या जवाब दिया कौम ने, क्या कहा लोगों ने? अगर हमारा रब चाहता तो फरिश्तों को नाजिल कर देता। वही धान के बांध कि नबी क्यों आ गया, हमें तो फरिश्ता चाहिए, इंसान नहीं चाहिए, फरिश्ता नबी चाहिए। फ़इन्ना बिमा उर्सिल तुम भी काफिरून, बस जो चीज़ देकर आप भेजे गए हैं हम तो इसका इनकार करते हैं। यानी आपका ये जो दावा है ना कि आपको अल्लाह ने कोई खास पैगाम देकर हमारी तरफ भेजा है और आप इस हवाले से हमारा जवाब भी सुन ले कि जो मर्जी कहें हम नहीं मानेंगे, जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन है आपके पास, जो मर्जी पेपर दिखा दें, जो मर्जी अपना सर्टिफिकेट दिखाएं, हम नहीं मानेंगे आपकी बात, क्योंकि दिल में तकब्बुर है। इसलिए कहा अच्छा, अल्लाह ताला आप दोनों की डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि कसूर क्या था आद और समूद का। फम आदन फस्तक बरू फिल अर्दी बेगैर हक, बस वो आद का मामला क्या था, उन्होंने जमीन में तकब्बुर किया बगैर हक के, यानी उनको हक नहीं पहुंचता था कि वो कोई तकब्बुर करें लेकिन कर लिया, और क्या नारा लगाया, वकालु मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, और उन्होंने कहा कौन है हमसे बढ़कर कुव्वत में, हमसे बढ़कर कुव्वत में और कौन है? अल्लाह अकबर। अल्लाह कहते हैं मैं बताऊं, अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिन्हुम कुव्वा, फरमाया कि उन्होंने गौर नहीं किया, क्या गौर नहीं किया उन्होंने, कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने उनको भी पैदा किया, वो ज्यादा शदीद है उनसे कुव्वत में। ये जवाब है किस चीज का, अशद्दु मिन्ना कुव्वा, इनसे ज्यादा कुव्वत वाला कौन है? वो रब जिसने इनको पैदा किया। जाहिर है उस रब से तो बड़े ये नहीं हो सकते ना। अपने दौर में कोई मद्दे मुकाबल और कौम तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन क्या अल्लाह की ताकत भी नजर नहीं आ रही जिसने इनको पैदा किया? वकानु भी आयातिना यजहदून, और वो तुम्हारी आयतों का इनकार ही करते रह गए। क्या किया हमने? फरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी अय्यामिन नहिसात, तो हमने इन पर छोड़ दी बहुत जोर की हवा नहुसत के दिनों में। अल्लाह अकबर। सूरत अल हक आयत 6 में आता है, सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, तो हाई तेज और शदीद हवा का झक्कड़ इन लोगों पर 7 रातों और 8 दिन तक मुसलसल चलता रहा। क्यों चला? लिनुज़ीक़हुम अज़ाब अल-ख़िज़्य फ़िल हयात दुनिया, ताकि हम इन्हें मजा चखाएं रुस्वा कुन अज़ाब का इस दुनिया की जिंदगी में। जबकि वला अज़ाबुल आख़िरति अख़्ज़ा वहुम ला युनसरून, और आखिरत का अज़ाब तो ज्यादा रुस्वा कुन होगा, वहां उनकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। लग रहा है ना कि आंखों के सामने से मंजर देख रहे हैं। मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हम तो सुपर पावर है, सुप्रीम पावर नहीं दिखी। आप देखिए, इन्होंने कुफर किया ना, तो कुफर का लफ्जी मानता होता है इनकार, लेकिन जहादा का मानी होता है सख्ती से इनकार। जो आम इनकार है ना, वो जहालत की वजह से होता है, लेकिन जहद ज्यादा सख्त इनकार होता है। इनकार माल हिल्म, और भी आयात इना से मुराद के कि आयात थी लेकिन जानने के बावजूद इनकार कर दिया। पूरा पढ़ लें, फिर इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह अगली आयत में। फिर इन पे अजाब की कुछ और कैफियत, आयत 16, फरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी अय्यामिन नहिसात, तो हमने छोड़ दी इन पर बहुत जोर की हवा नहुसत के दिनों में। नहुसत के दिन क्यों? इनके अमाल की नहुसत थी, अपने दिन नहीं थे। याद रखिए कि नहुसत अपने अमलों की होती है इंसान के ऊपर। वलाजा बुला आखिरती अखजा, अखजा जो है ना खिजुन से, सबसे बड़ा अफल तफतील का सीगा, सबसे ज्यादा रुस्वा करने वाला, ज्यादा रुस्वा कुन। और यामन नखिसात वही थे, सब बलयाल वसमानियत अय्याम। वलाजा बुला आखिरती अखजा वहुम ला युनसरून, वामा समूद फहदैनाहुम, और जो कौम समूद थी इनको तो हिदायत की राह दिखाई थी, कैसे रसूल भेजा, उनका मुतालबा पूरा किया, ऊंटनी आई और मुआवजा मिल गया। लेकिन इन जालिमों ने क्या किया? फस्तहब्बुल आमाल अल खुदा, लेकिन उन्होंने हिदायत के मुकाबले में अंधेपन को पसंद किया। कैसी बुरी च्वाइस थी, क्या लेके क्या छोड़ रहे हैं, हिदायत के बदले में आमा। वाज़े तालीमात पहुंच गई, हकायक मिल गए, लेकिन आंखें बंद कर ली तो क्या की हमने? फ़ाख़ज़त हुम सायक़तुल अज़ाब, तो हमने पकड़ लिया इनको अजाब से, कड़क से। कौन सा अजाब? अल अज़ाब बिल हून, जिल्लत वाला अजाब, बिमा कानु यक्सिबून, इनके करतूतों की बादाश में। वनज्जैना अल्लज़ीना आमनु वकानु यत्तकून, और हमने निजात दे दी इनको जो इनमें से ईमान लाए थे और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया था। बच्चा कौन? जो करना चाहते थे, जिनको अल्लाह ने मौका दिया और वो इस बात को बचो, वो बच गए और अल्लाह ने उनकी मदद कर दी। अब आप देखिए कि ये सारी आयतें पढ़ते वक्त जरा अपने दिल के ऊपर लीजिए इन चीजों को, कि ये सब कुछ कैसे हुआ। ईमान वाले बच गए, वनजैन अल्लज़ीना आमनु कानू यत्तकून, और ये ना बचे, वजह क्या है कि इनको बचना नहीं था, इनको ख्वाहिश नहीं थी। और ऐसे लोग हैं जो इन चीजों के ऊपर आकर अपने आप को अल्लाह के अजाबों का शिकार बनाते हैं। देखिए इसमें तकब्बुर दिख रहा है, किस तरह से अल्लाह ने इनको पकड़ा लेकिन इन्होंने अपने आप को बड़ा समझा। आज भी यही नारा है ना बहुत सारी कौमों का, हम बहुत बड़े हैं, वी आर सुपर पावर्स, और हमारे जैसा कौन होगा, कोई हम जैसा हो तो हमारे सामने आके दिखाए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी ताकत कितनी है। याद रखिए, दुनिया में बस एक ही जात बड़ी रह सकती है और वो अल्लाह की जात है। जिसने अल्लाह के मुकाबले में खुद को बड़ा समझा वो तबाह हो गया। ये एक पूरा कल्चर है, सेल्फ प्रेजिंग कल्चर। आज भी देखिए यही नारा लगता है कुछ कौमों की तरह से, हमारी सड़कें खूबसूरत, हमारा निज़ाम तालीम कितना अच्छा, हमारी तालीम देखिए, हमारा एजुकेशन सेटअप देखिए, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। याद रखिए, अल्लाह को ये दावे पसंद नहीं है। अपने आप को सजाना, अपने लोगों को मेडल देना, इतना अपने आप को बुलंद करना कि बस ये हुआ, इतना बुलंद दावा इतनी कमजोर बुनियाद पर। आप बताइए कि जो अल्लाह को नहीं मानता और दुनिया में खुद को बड़ा कहता है, तो उसकी इमारत का हाल क्या होगा? वही होगा जो बड़ी ऐसी इमारत है जिसकी बुनियाद ना और उसको बनाए, नीचे गिरेगा। जो महल बगैर बुनियाद के खड़ा किया जाए, जो उसका अंजाम होगा ना, वही बड़े बोल बोलने वालों का होता है। सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन, अपने आप को मुबारकें देते हैं। चंद दिन पहले एक बड़ा अच्छा पिक्चर मैसेजेस उसमें था, जिसका खुलासा क्या था कि बड़े बड़े दावे करना बड़ी बड़ी आजमाइशों को दावत देने के बराबर है। इंसान बाद दफा बड़ा बन जाता है, लेकिन वो बड़ा बन नहीं सकता, ये तकब्बुर है। तकब्बुर मुल्क भी करते हैं, तकब्बुर हुकूमतें भी करती हैं, तकब्बुर इंसाफ भी करते हैं। वो तो तकब्बुर करे जिसने अपने मुल्क में इंसाफ और खुशहाली रखी, फिर तो बात समझ आई। लेकिन जिन मुल्कों में हर दूसरा घर टूटे, जहां के बच्चे यतीम, जहां शादी के बगैर ताल्लुकात, जहां ड्रग्स और जहां जो कुछ है, वो कैसे कह सकते हैं कि हम बहुत बड़े हैं? जहां खुदकुशियों के रेट देख लीजिए, घर टूटने देखें, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखिए, जहां से गुजरे इंसान फसाद और जंग की आग चला जाए और दावा करे कि मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, तो याद रखिए अलकवी तो वो सुपर सुप्रीम पावर है, उसको मानना पड़ेगा। जब तक अल्लाह के कानून को नहीं मानेंगे, उसको मालिक हकीकी नहीं मानेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। होता पता क्या कि अंधों में काना राजा, एक मारूफ कहावत है हमारे कल्चर में। मिसाल लीजिए, एक कुर्सी को लीजिए, छोटे से कमरे में आप एक कुर्सी रखें, बहुत बड़ी लगेगी। उस कुर्सी को वहां से उठाकर एक बड़े से हॉल में जाके रख दें, तो वो कुर्सी छोटी लगेगी। और इसका ऑपोजिट भी ऐसे ही है। वही बंदा दावा करता है जिसको अपने इर्द गिर्द कोई नजर नहीं आ रहे होते। जब आपकी नजर अल्लाह पर होगी, आप अल्लाह के दीन के ऊपर नजरें रखेंगे, तो आपको फिर अपनी बातें बहुत छोटी दिखेंगी, तो अल्लाह को ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते। और आपको भी यही एडवाइस दूंगी, कभी दावे ना करें, अपने आप को कभी ना सजाएं। तारीफें, मेरे इतने नंबर, मैं इस काबिल थी, मेरी सलाहियत, मेरे में खूबी है, खाक है, बस इतनी बात है। जिसने खुद को अच्छा कह दिया ना, वो अच्छा नहीं है। अच्छा वही होता है जिसको ये पता होता है कि मैं कोशिश तो करता हूं, पर होती नहीं हूं अच्छे काम के काबिल। ये बड़े बड़े बातें करके इंसान, दावे कर करके, यकीन कीजिए, अपने पाँव पे कुल्हाड़े मारता है। अल्लाह के नबी सल्लम को अगर आप रोल मॉडल बनाकर देख लें, आपके सहाबा ने बड़े बड़े मार के दिखाए दीन के लिए जंगों में। एक कमेंट सिंपल छोटा सा किसी जंग के मौके पे अबू तलहा के लिए कि विदा अम्मी वाबी, अबू तलहा तुझ पे मेरी माँ बाप कुर्बान। कभी आपने किसी को कहा मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, कभी कहा आज की सारी जंग तो अबू काशा ले गए, दैट्स इट, खत्म। हल्का सा मोटिवेटिंग सेंटेंस और दैट्स इट। ना तमगे, ना मेडल, ना वजीफे, ना सर्टिफिकेट, ना डिप्लोमे। वजह क्या है कि उसके बाद बंदा भूलता है। आपको पता है कि मेरे असलाफ जो थे, वो तालिब इल्मों को सर्टिफिकेट नहीं देते थे। कहते थे जिस दिन इनको दे दिया, उस दिन इनके दिमागों में हवा भरेगी और नहीं सीखेंगे। 10 10 साल बुलाते थे और फिर उसके बाद उसको और से और चीजों में लगाते थे, और ये एहसास नहीं होने देते थे कि तुम किसी जगह पहुंच गए हो। अभी पिछली मंजिल मिली नहीं, अगली दिखा दी, ताकि अगले के दिमाग में हवा ना भरे कि तुम बहुत बड़े हो गए हो। और यही शायद कामयाब तरीका था। आज हम दूसरों की नजरों में आते हैं और बाद में करना कराना कुछ भी नहीं होता। फिर यहाँ ये लफ्ज कितना डराने वाला है, अलामा और अलहुदा, दो लफ्ज आपस में देखिए मिला के ऑपोजिट है ना। अल्लाह कहते हैं फहदई ना हम, हमने हिदायत दी थी। हिदायत के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं ना, हिदायत इरशाद और हिदायत बयानी, पीछे आपको बताया था, रास्ता दिखाना, लेकिन आखिरी मंजिल होती है हिदायत इरशाद, ये वहां ना पहुंच सके। अल्लाह ने हिदायत दिखाई, ये चले नहीं। देखिए फितरत का असूल याद रखिए, रास्ता दिखाया जाए लेकिन चलना अपने खुद है। तौफीक जब मिलती है हिदायत के सफर पे चलने की, फिर ही आप कामयाब है। तो इंसान की बदबख्ती है कि इंसान की हिदायत का इंतजाम मौजूद हो, वो फिर अंधा रहे। तो अल्लाह कहते हैं उन पे बिजली पड़ी, सायका, यहां असली मानों में कड़क, कभी रजफा का लफ्ज है, कभी दम मरना का लफ्ज है। और यहां ये भी बात पता चलती है कि आखिर में अल्लाह की सारी पकड़ से बचने वाले लोग आमनू व कानू यत्तकून। ईमान लाकर नहीं बैठ जाते, तकवा इख्तियार करते हैं। सूरह हूद आयत 66 में पढ़ चुके। क्योंकि सच्चा ईमान आता है ना, जम जाता है बंदा, फिर गलत बात भी मुंह से नहीं निकलती। और ऐसे वक्त में फिर अल्लाह ताला में एक मंजर दिखाता है।